मस्तक बीच मणि के समान, क्योंकि मणि बहुत चमकती हुई होती है। देखिए कभी मणि सुनी है, हा? देखा है किसने मणि को? है कोई ऐसा बैठा हुआ जिसने मणि को देखा हो? स्थूल मणि जिसका नाम है, क्या देखा है क्या है? हा? इसने हाँ बोला इसलिए। तो सुनी हुई बात है। मस्तक बीच मणि के समान, क्योंकि मणि बहुत चमकती हुई होती है। देखिए कभी मणि सुनी है, हा? देखा है किसने मणि को? है कोई ऐसा बैठा हुआ जिसने मणि को देखा हो? स्थूल मणि जिसका नाम है, क्या देखा है क्या है? इसने हाँ बोला इसलिए। तो सुनी हुई बात है कि मणि बहुत चमकने वाली चीज होती है। सच्ची मणि तो कोई यहाँ देखने वाला नहीं होगा, लेकिन ये मस्तक बीच मणि, बिरकुटी के बीच चमकती हुई आत्म ज्योति, यह तो सबने देखी है ना, या नहीं? देखी है सबने? या है कोई ऐसा जिसने न देखी हो? उसके लिए पूछा जाता है कोई ऐसा जिसने देखी हो, और इसके लिए पूछा जाता है कोई ऐसा जिसने न देखी हो। तो सभी मस्तक बीच बिरकुटी के बीच चमकती हुई ये आत्म ज्योति, उसका साक्षात्कार कहें या देखना कहें, है? क्या कहेंगे? देखना कहें, साक्षात्कार नहीं, साक्षात्कार कहें, साक्षात देखना कहें, करेक्ट शब्द, साक्षात अनुभव करना कहें। अच्छा, और बोलो, देखो बिना बिना विचार है, दिव्य दृष्टि से देखना उसको साक्षात्कार कहा जाता है। इसलिए पूछा कि साक्षात्कार कहें या देखना कहें। अगर साक्षात्कार कहें तो क्या हर्ज है? बाकी रह जाता है। अच्छा, ऐसा न माने कि हमारे ये नेत्र ही दिव्य बन गए, दिव्य दृष्टि जो वैसे मानी हुई है वो तो उस रीति मानती है। दिव्य दृष्टि में साक्षात्कार करना अर्थात जब देह भान से पड़े हो जाते हैं, देह का केवल ध्यान ही नहीं परंतु देह की शुद्ध बुद्ध से पड़े दिव्य दृष्टि में जाते हैं तब साक्षात्कार होता है। लेकिन ज्ञान से हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारी दृष्टि नेत्र दिव्य बन जाते हैं तो हम आत्म ज्योति को देख सकते हैं। तो हम अगर उसको कहें हम आत्म ज्योति का साक्षात्कार करते हैं, वो शुद्ध शब्द अगर हम अपने इस नेत्रों से लगाएं तो नहीं लगा सकते, हाँ? लगा सकते हैं या नहीं? लगा सकते हैं जबकि हम जानकार आपस में बैठे हुए हैं। बाहर वालों के सामने बोलेंगे तो वो साक्षात्कार का वो अर्थ लेंगे, लेकिन हम अगर आपस में ये शब्द यूज करें तो हम इसका भाव अर्थ समझ सकते हैं कि अपनी दृष्टि ही इतनी दिव्य बन जाए, अपनी दृष्टि दिव्य बन जाती है। अर्थात एक तो बुद्धि दिव्य है जिससे अपनी वृत्ति शुद्ध है, शुद्ध वृत्ति के आधार से, और उस दिव्य स्मृति के आधार से जो हमारे नेत्र हैं वो भी दिव्यता को ही देखते हैं, स्थूल को नहीं देखते। देखते हुए स्थूल को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, अर्थात स्थूल को देखते हुए उस दिव्य वस्तु को देखते हैं, और तब ही देख सकते हैं जब हमारी स्मृति दिव्य है, स्मृति के आधार से हमारी वृत्ति शुद्ध बनी हुई है, और उस दिव्य स्मृति शुद्ध वृत्ति के आधार से यह हमारी दृष्टि भी शुद्ध अथवा रूहानी बन जाती है, जिससे हम स्थूल देह को देखते हुए भी हम उस दिव्य वस्तु को अर्थात अपनी अथवा दूसरे की आत्म ज्योति को देख सकते हैं। यही तो बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिस कहते हैं, अभ्यास करो, भाई भाई के देखने का अभ्यास करो। इसका मतलब क्या कि सदा हमारी स्मृति के अंदर, सदा हमारी वृत्ति के अंदर वो बात याद रहे, और उसी वृत्ति के आधार से जो कुछ भी हम देखें हमें दिव्य ही दिखाई पड़े। लेकिन यह देखना हमारी स्मृति और वृत्ति के आधार से, दिव्य दृष्टि में देखना वो एक प्रभु का वरदान है, उस वरदान के आधार से देखते हैं, लेकिन ये स्वयं के स्थिति के आधार से देखते हैं। तो वरदान के बाद भी हमें अपनी स्थिति बनानी पड़ती है, और स्थिति बनाने से वो हमारी दृष्टि स्थाई दिव्य बन सकती है अपनी स्थिति के आधार से। अगर हम स्थिति वो नहीं बनाते हैं, स्थिति का आधार किस पर रहा? स्मृति और वृत्ति। वृत्ति क्या और स्मृति क्या, दोनों में अंतर है या एक है? थोड़ा सा अंतर है, कहां कहां तो बोलने में मिल भी जाता है, लेकिन अगर प्रोसेस को देखा जाए तो उसमें थोड़ा अंतर है। अच्छा, अभी आते हैं उस बात पर। किस बात पर? आपको आज क्या विचार सागर मंथन के लिए टॉपिक मिली है? आप लोगों को क्या मिली थी? मास्टर ज्ञान सूरज की स्टेज क्या है, ये मिला है मंथन करने के लिए। मास्टर ज्ञान सूर्य और मास्टर शांति स्वरूप, ऐसा ना? शांति सागर, शांति सूर्य। अच्छा, ज्ञान सूर्य और शांति सूर्य। और वो शाम के लिए डबल लाइट फरिश्ता। अच्छा, तो मुझे तो उस टॉपिक पर नहीं बोलना है, वो तो आप लोग बताएंगे अपना मंथन, जिसने काम दिया है वो ही लेंगे। ऐसा ही होता है ना, जो जो पीरियड ले और जो काम दे वो वही फिर आकर के ले। और अपनी विषय है विचार सागर मंथन कैसे करें, वो तो कर लिया आप लोगों ने, आप सब तो होशियार हैं, पुराने हैं, नए नहीं है जिन्हों को सिखाया जाए विचार सागर मंथन कैसे करो। हम उस टॉपिक को लेते हैं जिसमें ये मंथन भी आ जाएगा, लेकिन आपको मंथन की टॉपिक मिली है तो मंथन तो कर ही बैठे है। कैसे करें अभी तो मेरा समझाने का, इसके पहले समझाते तो अच्छा रहता लेकिन आप सब पुराने हैं और जानते हैं, हम इस बात को ले रहे हैं कि हमारे सहयोग के साथ विशेष किसका कनेक्शन है योग के साथ हमारा, यानी योग के साथ हमारे मन और बुद्धि का अधिक संबंध है। अर्थात योग हम लगाते ही मन बुद्धि के आधार से है, ठीक है ना। कभी कहते हैं मन को एकाग्र करो, कभी बाबा कहते हैं मन मनाभा, मन को मेरे में लगाओ, और कभी कहा जाता है बुद्धि योग एक से बाबा में लगाओ, दोनों शब्द यूज करते हैं ना। तो हमारे योग का संबंध मन और बुद्धि के साथ अधिक है। अब मन और बुद्धि दोनों जब एक बन जाए, योग माना यूनियन, जोड़ना, जोड़ना बोलते हैं ना, योग माना जोड़ना, योग माना मिलन ऐसा भी कहते हैं ना, तो योग माना जोड़ना माना यूनियन, यूनिटी हो जाए आत्मा की परमात्मा के साथ, जोड़ जुट जाए, इसको कहा जाता है योग, ऐसे बोलते हैं ना। और वो योग हम बुद्धि के आधार से लगाते हैं, बुद्धि योग। तो जब हम कहते हैं योग माना जोड़ है, योग माना आपस में यूनिटी हो जाए, मिलन हो जाए, तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, उसके पहले अपनी मन और बुद्धि का आपस में मिलन। अर्थात जब मन और बुद्धि दोनों एक ही दिशा में काम करें, ऐसे नहीं मन कुछ और सोचे और बुद्धि में कुछ और चिंतन हो, जो बुद्धि के अंदर विचार हो, सोच हो, मन भी उसी प्रकार से सोचे। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, मैं चाहता हूं ऐसे करूं, परंतु जैसे हम चाहते हैं कि हम योग में बड़ी एकाग्रता से बैठे रहें, एक घंटा आधा घंटा बस निरंतर मेरा योग लगा रहे, परंतु जब पूछा जाता है योग ठीक लगा रहा, सारा टाइम योग में ठीक बैठे, तो क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा संकल्प चले, कहा जाता है ना ऐसा। तो बुद्धि ने क्या सोचा, मैं एकाग्र योग में निरंतर बैठा रहूं, और मन ने क्या किया, और कुछ ना कुछ बीच बीच में और संकल्प चला दिए, चल गए, तो दोनों का एक नहीं हुआ ना, दोनों में अंतर हो गया। जब दोनों में भेद है, दोनों एक नहीं है, तो फिर आत्मा, जो आत्मा मन बुद्धि संस्कार वाली है, तीनों की मिली हुई आत्मा है। अब तीनों में अगर दो आपस में ना मिले तो आत्मा एक नहीं हुई ना, उसके उस समय ही दो प्रकार के काम हो गए, फिर बाप से योग कैसे लगेगा। तो इसलिए मन और बुद्धि एक ही दिशा में काम करें, उसके लिए हमें मनन चिंतन अथवा मंथन, मनन चिंतन और मंथन, तीन प्रकार की ये जो विधि है। मनन करना माना मनन करना माना, मनन करना माना स्मरण करना, फिर याद करना। जो बात, जिस बात को हमें ध्यान पे लेना है, जिस बात को हमें अच्छी रीत समझना है, जो बात हमें अच्छी लगती है, जो बात हमें ग्रहण करनी है, जिस बात को हम धारण करने चाहते हैं, उस बात को बार बार फिर याद करते रहना, स्मरण करते रहना, जिसको कहा जाए स्मरण करना, माना बार बार फिर जैसे हम ड्रामा के लिए कहते हैं ना, फिर से वही समय है, तो बाबा फिर से क्यों कहते हैं? और फिर से की बात बाबा बड़ी ध्यान से हम बच्चों को देते हैं, तो हमें वो स्मृति आ जाए। फिर से हम देवता थे, हमें फिर से देवता बनना है। एक फिर से शब्द में पूरा कल्प आ जाता है, कल्प की याद आ जाती है, और वो कल्प की स्मृति हमें उधर खींच जाती है कि हम देवता थे। माना वो बीता हुआ जमाना जैसे कि फिर से हमारे सामने ले आते हैं, जिससे हमें अपने में कॉन्फिडेंस हो कि बरोबर हम बन सकते हैं। एक फिर से शब्द में, इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते थे, जो आप लोग भी मुरलियों में सुनते हैं कि बाबा कहते हैं, आजकल ड्रामा की नॉलेज हम कम सुनते हैं, मुरलियों में थोड़ी थोड़ी आ जाती है, लेकिन जब ड्रामा की बात, ड्रामा का ज्ञान जब शुरू हुआ तो इस बात पर बाबा हम बच्चों को बहुत जोर देता था। कभी समझो हम भूल से ये शब्द नहीं कहते हैं, ड्रामा में ऐसे था, या वो ड्रामा का राज समझा भी लेते हैं, लेकिन बाबा हमें इस बात पर जरूर खड़ा करता था, तो बच्चे फिर से बोलो, क्योंकि ये रिपीट होता है, तो फिर से कहने से ये रिपीटिशन, माना ऐसा था, है और फिर होगा, ये बुद्धि में आ जाएगा, माना तीनों काल हमारे बुद्धि में आ जाएंगे। तो मनन करना माना फिर उसी बात को याद करना, फिर उसी बात को दोहराना जो हम चाहते हैं, जिसको हम धारण करते हैं। तो क्या होगा, हम फिर याद करने से एक तरफ हमें याद पड़ जाएंगी, और याद से क्या होगा कि हमारे बुद्धि के अंदर वो बैठ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। याद हम क्यों करते हैं कि वो हमारे पूरी रीत से समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाएंगी तो स्वरूप बनना, अनुभव करना सहज हो जाता है। तो चिंतन करना किसको कहा जाता है, मनन करने की ये मैंने बात बताई। मनन और चिंतन, चिंतन माना हमको पूरा सुनाई नहीं पड़ रहा है हाँ बोलो, चिंतन करना माना प्रश्न दे करके और उसको स्पष्ट करना, ऐसे। और मथन करना माना, ये मथन करना जो आपने बताया ना, वो मथन करना, स्पष्ट करना, विस्तार में लाना, उसको मथन करना कहा जाएगा। और चिंतन करना माना, चिंतन करना अर्थात सोचना, सोच करना। सोच हम, जैसे पहली बात आई ना, जब हमारे समझ में आ जाती है, उस समझ को हम अंदर ही अंदर फिर सोचते हैं। जैसे समझो इसके कंट्रास्ट में शब्द आता है चिंता, जिसको चिंता कहते हैं ना, तो चिंता किसको कहते हैं? जो बात हमें अंदर लग जाती है, दुख की बात, चिंता शब्द दुख का है, तो जो बात हमें अंदर लग जाती है वो अपने आप घड़ी घड़ी याद आती रहेंगी, उसका पूरा भाव वो हमारे चेहरे पे एक चिंता का रूप ले आता है। माना जो मेरे अंदर लग गई है बात, वो हमको याद आती है तो एकदम दुख हमें इमर्ज हो जाता है। तो उसके कंट्रास्ट में वो चिंता हुआ दुख का, और चिंतन हुआ कि जो बात हमारे समझ में आ गई, मनन किया ना, मनन करते 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 जो मेरे समझ में आ गई, उसको हम अंदर ऐसा समझो सोच लेते हैं, सोच में ले आते हैं, जो उस पर मेरा एक गहराई से सोच चलता है। इसलिए बुद्धि को सोच शक्ति कहा जाता है, मन को स्मरण शक्ति कहा जाता है दोनों शक्तियां, पर बुद्धि को सोच शक्ति अर्थात जो बात मेरे अंदर लग जाती है उसको हम अंदर ही अंदर सोच करके अपने में समा लेते हैं, और वो हमारे जैसे चित्त पर माना बुद्धि में बैठ जाती है। तो जो मेरी बुद्धि में बैठ जाती है उस पर अपने आप चिंतन चलता रहेगा। जैसे दुख जब लग जाता है तो अपने आप वो याद आता है, अपने आप वो सारी उसकी सीन आती है, या उस पर और भी आगे आगे विचार चलते हैं जो चिंता का रूप बन जाता है। ऐसे समझो ये शुद्ध चिंतन भी जो हमारे अंदर बात लग जाती है वो अंदर ही अंदर हमारे में ऐसे समा जाती है जिस पर हमारा अपने आप सहज स्वाभाविक विचार चलते रहते हैं। तो मन के द्वारा पहले मन का काम वैसे भी कहा जाता है मन अर्थात संकल्प, संकल्प घड़ी घड़ी उठेगा, विचार करना जरा सोच समझ के विचार किया जाता है, माना किस बात को बहुत बहुत डेप्थ से या बहुत थोड़ा गहराई से जो समझ में आ गई उसको अब कैसे इसको अपनाना है, उसको उसी अपनाने की रीति से सोचा जाता है। और मथन करना तो माना कोई भी बात को विस्तार से स्पष्ट करना, उसका स्पष्टीकरण करना, समझाने के लिए उसको कहा जाता है विचार सागर मथन करना। विचार विचार आएगा लेकिन उस विचार के सागर को मथन करो, उसके अंदर स्पष्टीकरण करके उस बात को और को रिफाइन करके दो जिससे और को समझ में आ जाए। तो अब ये मनन और चिंतन इसका हमारा अधिक कनेक्शन है, इसलिए बाबा हमें बार बार ये कहते हैं बच्चे सारा दिन तुम मनन करते रहो, जो भी सुनते हो, मानो आज हमने बाबा की मुरली सुनी तो जो हमने सुना उस पर हमारा मनन चलना चाहिए, उससे कुछ न कुछ हम याद रखें जरूर। भले हम कहते हैं ज्ञान हमारे समझ में आ गया है, लेकिन समझ में हमारे सब आ गया है, लेकिन सब की सब बातें हमारे स्वरूप में तो नहीं आ गई है ना। ये हमने समझ लिया है मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, उसका हम अभ्यास करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, शक्ति लेते हैं, लेकिन आत्मा के जितने भी गुण हैं, आत्मा का ज्योति स्वरूप जितना पावरफुल है, आत्मा की ज्योति जितनी परफेक्ट है, पवित्र है, जितनी उसके अंदर सत्यता है, वो पूर्ण रूप से तो हमारे में नहीं आ गई है ना। उसके लिए हमें इसको चिंतन करते रहना पड़ता है जिससे हमारे में जो उनकी पूरी क्वालिफिकेशंस है वो हमारे में, जितना हम चिंतन करेंगे उतनी क्वालिफिकेशंस हमारे में आती जाएंगी, उतनी उनकी शक्ति हमारे में भरती जाएंगे। चिंतन करना माना अपने में चेतनता जागृत करना, चेतनता चेतन शक्ति है ना, आत्मा को चेतन कहा जाता है ना, तो वो चेतनता कौन सी चेतनता, जिस बात को हम सोचते हैं, जो बात हम धारण करनी चाहते हैं उस पर हमारा चिंतन जितना चलेगा, जितना हम उसको गहराई से चिंतन करेंगे तो उसकी चेतनता माना उसकी जो शक्ति है वो हमारे में भरती जाएंगे। तो जितना हम चिंतन करते जाएंगे उतनी हमारे में चेतनता अर्थात शक्ति आती जाएंगी। इसलिए हमें मनन चिंतन करना आवश्यक है। अब सारा दिन अगर हमारा इस प्रकार मनन चिंतन चलता है तो हम देखेंगे हमारा योग बड़ा अच्छा और सहज, हमें योग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका भाव अर्थ क्या हुआ, क्योंकि सुबह से लेकर के हमारे अंदर बाबा के महावाक्यों का स्मरण है। भाई वैसे अगर हम सोचें आज हम क्या मनन करें, तो इसके लिए तो सहज है, रोज रोज बाबा से हमें ज्ञान खजाना मिलता ही है, भले वही पॉइंट्स भी रिपीट हो। कभी कभी कोई कहते हैं ना मुरली तो वही चलती है ना, वो तो हमारी सुनी हुई है ना, हमें समझ में आई है ना। अगर जब भी मन में ये संकल्प आए तब ये सोचो कि हम लोगों को आज 53 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हम आज तक भी ये कभी नहीं कहेंगे मुरली तो सुनी हुई है ना और हमारी तो समझी हुई है ना। अच्छा नहीं, आज नहीं सुनी नहीं पड़ी तो क्या हर्ज है। हम मुरली को एक समझते हैं नया नया खजाना है, भले वो ही है, हमारे लिए तो 5वीं 6वीं बार रिवाइज होती है। आप लोग में तो कई ऐसे होंगे जिसके लिए पहला ही बार होगा, 5 बरस तो पहला ही बार हो गया समझो, लेकिन इसके अंदर इतना खजाना, सागर का ये खजाना है, ज्ञान सागर की ये मुरली है, उसके हर बात के अंदर सागर के समान खजाना भरा हुआ, हर पॉइंट के अंदर। हम लोगों ने तो ये अनुभव करके देखा है, हर मुरली को भले वही बात समझो, ड्रामा की पॉइंट मुरली में हर मुरली में आती है, लेकिन हर मुरली से वही ड्रामा की पॉइंट आप उस पर सोचो मनन करो, आपको उसका नया नया अर्थ आएगा, नई नई बात आएंगी। और उससे फायदा ये होगा कि ड्रामा पर स्थित रहने की जो अडोलता है वो हमारे में आती जाएगी। रिजल्ट जो इसकी हमको चाहिए, ड्रामा की नॉलेज बाबा हमें क्यों बताते हैं, कल या परसों क्लास हुआ ना ड्रामा पर, लाइट क्या है, माइट कैसे, क्या माइट मिलती है, तो वो जो माइट मिलती है, लाइट तो आ गई, नॉलेज तो मिल गई, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज तो मिल गई, रोशनी तो मिल गई, पर उससे जो हमारे में शक्ति आनी है वो शक्ति हमें उसको बार बार चिंतन करने से प्राप्त होती है। तो जब भी हम उस पर चिंतन करेंगे तो उसका भिन्न भिन्न पहलू आता है। जैसे मैंने एक पहलू बताया, फिर से अगर फिर से की बात पर सोचो तो कितनी बातें हमें स्मृति में आती है और उससे हमको कितने लाभ होते हैं। अच्छा वो हमने वर्णन तो कर दिया, लेकिन इतने सब लाभ मैंने अनुभव किया है, मेरे जीवन में वो सब लाभ मिले हैं। मैं ये दावा से कह सकता हूं कि जितने लाभ मैं वर्णन कर रहा हूं अथवा कर रही हूं वो लाभ मैंने प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाए हैं। मैं नहीं समझती हूं कोई ऐसा कह सकता कि वो सब लाभ, जितना अभी अगर पॉइंट्स निकाले तो कितनी पॉइंट्स निकल जाएंगी, उस दिन ड्रामा पर किया होगा कितनी पॉइंट्स निकली, और एक एक पॉइंट अपने से पूछो तो कितनी पॉइंट पर इनटू आएगा और कितनी पॉइंट पर राइट मार्क आएगा। तो इतने जो लाभ हम वर्णन करते हैं वो हमारे प्रयोग में आवे, उससे वो शक्ति हमारे में जागृत रहे, उसके लिए हमें वार वार उस पर चिंतन करना पड़ता है। मनन करने के लिए तो बाबा हमें रोज रोज का खजाना देता है, इसलिए बाबा भी कभी कभी मुरलियों में हमें कहते हैं बच्चे कोई ना कोई पॉइंट नोट करो जिस पर आप विचार करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि हम जानते हैं मन एक ऐसी शक्ति है जिसको चिप करके बिठाओ तो बैठेगा नहीं, अपने आप भी चलना शुरू कर देगा। तो जबकि हम उसकी आदत को जानते, हम तो मालिक है ना उसके, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, वैसे हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, ये तो मुझे शक्ति होनी चाहिए ना। नहीं, अब ये मेरे में शक्ति कहाँ तक है, मेरे में सचमुच ये शक्ति है या नहीं है, ये हमें अपने मनन चिंतन से पता चलेगा। अगर हमारा इन्हीं बातों पर मनन चलता रहता है तो हमारे अंदर और कोई संकल्प उठेगा, भले कोई काम भी पड़ेगा, काम करेंगे, लेकिन हमें काम करते भी बीच बीच में हमें अपनी ये स्मृति आती रहेंगी, लेकिन ये तब आएंगी जब हमारा अपना अटेंशन इस बात पर दिया हुआ होगा, जो हमने रोज इस बात का अभ्यास किया होगा, कोई न कोई बात पर अपने अटेंशन से हम मनन करते रहते हैं और फिर उस पर हमारा चिंतन रहता है। केवल मनन तक ही नहीं, जब वो मनन की हुई बात हमारे चिंतन में आ जाती है, माना बुद्धि में बैठ जाती है, जो पुराने पुराने भाई होंगे जिन्होंने हमारी दीदी जी को देखा होगा, तो दीदी जी हमेशा पूछती थी तुम्हारे इस बट्टी से कौन सी बात तुमको फिट बैठी है, फिट कौन सी हो गई। फिट हुई माना जो बात आपके बुद्धि में धारण हो गई, जिस बात ने आपके बुद्धि में पूर्ण स्थान ले लिया, जब बुद्धि के अंदर फिट बैठ जाती है, माना कि वो मेरे कर्मों में, मेरे जीवन में, मेरे स्थिति में आती रहेगी, उससे हमारी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए हमें मनन करना आवश्यक है और मनन करके अपने चिंतन के अंदर, चिंतन माना अपने अंदर ये ज्ञान को ऐसा समा देना है जो जब हम दिन भर में चलते हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये ऐसा समाया हुआ हो जो काम करते भी हमें इन बातों की स्मृति सुतह आती रहे। अगर इस प्रकार हमारा अभ्यास होता है तो हमारा योग बड़ा सा है। जब भी हम योग में बैठे हमें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम सहज ही बैठेंगे और उस स्वस्मृति में हम अपने को एकाग्र कर सकेंगे। जैसे देखो अभी आप लोग मधुबन में हैं, अभी आपको और कोई स्थूल कार्य नहीं है, माना व्यवहारिक कोई भी कार्य नहीं है, बल्कि यहाँ भी कोई स्थूल कार्य नहीं है जिसका बोझ रहे, अटेंशन रहे, चाहे टेंशन रहे, ये करना है वो करना है, नहीं, दिनचर्या बनी हुई मिली है, ये करो ये करो ये करो, बच्चों के समान जैसे बोलो वैसे करते हैं। तो क्या हुआ, बुद्धि से और बुद्धि और सब तरफ से फ्री है। अब ये एक ही लक्ष्य है कि जो कुछ हमें मिल रहा है, जो प्रोग्राम मिलता है अथवा जो बातें हमें सुनाई जा रही है, हमें अपने बुद्धि को उसमें लगा के रखना है। तो अपने लिए योग सहज होता है, जो सबको ये अनुभव होता है, योग बड़ा अच्छा, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा, वातावरण बड़ा अच्छा, बस दिल करता है इसमें ही बैठे रहूं। फर्क क्या पड़ा, फर्क केवल अपने मन और बुद्धि का ही रहा कि बुद्धि के अंदर अभी हमारे यही है कि अब हम मधुबन में आए हैं, हम इसमें अपनी बैटरी को चार्ज करके ही जाएंगे, अथवा हम भट्टी में आए हैं तो भट्टी में आने से जो हमें लाभ मिलना चाहिए, भट्टी में पक करके निकलना है, चाहे तपस्या में पक जाओ, चाहे ज्ञान का रंग पक्का चढ़ा लो, रंग पक्का चढ़ाना माना जो भी हमारे ज्ञान की बातें हैं, जिसको हम कहते हैं ये हमारे जीवन में होना चाहिए, उसको हम जीवन के कर्मों में लाते रहें, अथवा हम जो स्थिति की स्टेजेस बनाने चाहते हैं उन स्टेजेस पर हम अपन को स्थित कर सके, इसमें ही हमें सारा दिन। इसलिए आज भी आप लोगों को विशेष रूप से विचार सागर मंथन के लिए टॉपिक दी गई है कि जब भी योग से उठो तो काम मिला हुआ हो, क्योंकि मन और बुद्धि सूक्ष्म होने के कारण उसको सूक्ष्म काम चाहिए, स्थूल नहीं। जब सूक्ष्म काम से फ्री है तो जो कर्म इंद्रियां स्थूल काम करती है, मन बुद्धि उसमें लग जाता है। वास्तव में स्थूल कर्म में मन को लगने का जरूर नहीं है। स्थूल कर्म करना स्थूल कर्म इंद्रियों का काम है। मन को वास्तव में उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है ना, हर कर्म इंद्रिय का काम अपना है। हाथ का काम अपना, आंखों का काम अपना, मुख का, हर एक का अपना अपना है ना। जो काम मुख कर सकता है वो काम कान करेंगे, जो काम हाथ कर सकते हैं वो काम मुख करेगा। हर एक का अपना अपना है ना। वैसे मन का काम अपना, बुद्धि का काम अपना और स्थूल कर्म इंद्रियों का काम अपना। परंतु मन चंचल इसलिए बोलते हैं कि उसको 24 घंटा काम चाहिए। अब हम उसको काम नहीं देते हैं। जो उसका काम क्या है, सूक्ष्म में कुछ न कुछ स्मरण करते रहना। अब अगर हम उसको सूक्ष्म स्मरण नहीं देते हैं मालिक बनकर के, तो वो क्या करता है, दूसरे के काम में इंटरफियर कर देता है। हुआ ना ऐसा, माना जो काम आंखें समझो देखती है किसको, चलो आंख का तो काम हुआ देखना, पर मन उसमें इंटरफियर करके फिर उसके ऊपर कैसा है, क्या है, ये है, वो है, कई बातें याद कर लेता है उसकी, करता है ना ऐसा। तो मन को हमने मालिक बन करके अपना काम नहीं दिया तो वो दूसरे के काम में उसने इंटरफियर कर दिया। तो अगर दूसरा कोई दूसरे के काम में इंटरफियर कर देता है तो क्या हो जाता है, दोनों का काम बिगड़ जाता है। जिसमें इंटरफियर करेगा उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसने इंटरफियर किया माना खुद फ्री है तो उसके काम को बदल देंगे। अब जो हमारी कर्म इंद्रियां केवल देखते हुए न देखने का काम करें, जब मन उसमें घुस जाता है तो क्या करती है, हा? क्या हो जाता है, क्योंकि मन को हमने स्मरण करने का काम नहीं दिया तो स्मृति में नहीं रहा तो देह भान में आ जाती। तो कर्म इंद्रियां देखती है, उनका काम है केवल देखना, लेकिन मन का इंटरफियर होने से देह भान हमारा बढ़ जाता है, देह भान में आ जाती है, ये कैसा है, क्या है, कई प्रकार की उनकी बातें याद कर लेती है, क्योंकि मन का काम है याद करना, स्मरण करना। इसलिए बाबा कहते हैं, हे आत्मा, तू स्वयं का मालिक बन करके जो भगवानों वाच्य हैं उसको स्मरण करते रहो तो मन दूसरे के कर्म में इंटरफियर नहीं करेगा, तो तुम देह भान से बचे रहेंगे, देह अभिमान भी हमारा सहज छूट जाएगा, जबकि हम मन को वार वार ये स्मृति देते रहेंगे। क्योंकि बार बार स्मरण करने से वो बात हमारे बुद्धि के अंदर बैठ जाती है, और जब बुद्धि में आ गया तो वो अपने आप हम देखेंगे तो हमारी वो वृत्ति बन जाती है, जिसको कहा जाता है ना वृत्ति, वो वृत्ति बन जाती है। कहते हैं ना हम शुभ भावना से देखो, तो शुभ भावना कहाँ से जागृत होंगी, जब हमारी बुद्धि के अंदर शुभ भावनाएं भरी हुई हो तो वो शुभ भावना हमारी अपने आप जागृत हो, क्योंकि चेतनता वो जागृत हो, हम किसको भी देखें तो उसमें हमारी वो बुद्धि काम करे, उस वृत्ति से शुभ भावना हमारी इमर्ज हो, तो हमारे सोच में फिर हमारे को संकल्प क्या आएगा, वही शुभ वृत्ति का संकल्प आएगा। तो ये क्या हुआ, मानो कि हमने मन को अपनी अथॉरिटी से, आत्मा ने अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में रखी, अपनी पावर से, आत्मक शक्ति से अपने मन को अथवा अपना संकल्प वो शुद्ध रखा, जिससे उनकी वृत्ति ऐसे बन गई और उस वृत्ति से स्थूल कर्म इंद्रियां भी देखते हुए उनके अंदर शुभ भावना जागृत रही, तो वो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ बन गया। इसलिए हमारा मनन चिंतन करना बड़ा जरूरी है, जो हमें अपनी स्थिति बनाने में मदद करता है। ये जो हम आज हमें बाबा बताती है इतनी ऊंची स्टेज, फरिश्तेपन की स्टेज, अव्यक्त स्टेज, कर्मातीत स्टेज, सुनने में लगता है ये तो बड़ी ऊंची ऊंची स्टेजेस है, लेकिन बाबा हम बच्चों को बताते हैं किस लिए, कि हम बच्चे उस स्टेज को पा सकते हैं। हमें ऐसी स्टेज का अनुभव करना है, इसलिए तो बाबा हमें बताते हैं ना। पर वो अनुभव हमें कैसे हो, अनुभव करने की सहज विधि बाबा यही बताते हैं, और इसलिए बाबा हमें रोज रोज पढ़ाते रहते हैं, रोज रोज बताते रहते हैं, रोज रोज समझाते रहते। अब केवल हमें इतना ध्यान देना है, ये अटेंशन हमें रखना है कि जो हमें बाबा बताते हैं उस पर हम अपने अंदर में कितना अटेंशन रखते हैं। बस हमें सिर्फ ये अटेंशन रखना है, क्योंकि मन का काम है संकल्प करना, वो तो करता रहेगा, पर कौन सा करना है ये मुझे जज करके और उसको वो उस तरफ लगा देना, फिर वो वहां चलता रहेगा, फिर उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर उसका वो नेचुरल रूटीन हो जाता है। तो इस बात का हमें अटेंशन देना है। अब ये अटेंशन मेरा सदा बना रहे, ऐसे नहीं अभी मैंने दिया, चलो जब मेरे ध्यान पे आई तो दे दिया, फिर छूट गया, पर ये मेरा निरंतर बना रहे। उसके लिए पहले पहले हमको कुछ समय इस बात पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। जब उठते हैं, जैसे रात को भी आत्म प्रकाश भाई आप लोगों को बता रहे थे ना, उठने समय कौन सा संकल्प करो, अमृत वेले कैसे पावरफुल योग में रहो, हर बात की देखो नॉलेज डिटेल आपको मिल जाती है। अब उसका प्रयोग किया, वैसे तो आज योग है, योग का दिन है, योग की बट्टी है, प्रयोग करना बड़ा आज सहज है। और वो हर एक अपने आप से पूछे कि सुबह से लेकर हमने उन बातों को प्रयोग किया, जिन्होंने किया वो आदत है। चलो फिर भी मेजॉरिटी है, क्योंकि आज योग बची थी इसलिए शायद फिर भी ये तो अमृत वेले उठने से ही उसने अभ्यास बताया था, वैसे तो हमें रोज भी बताते हैं, परंतु जो नियम एक बार हम शुरू करें और उससे हमें लाभ मिलता है, वो हमें स्थिति बनाने में मदद करता है, उस नियम को हम छोड़े नहीं। तो बुद्धि का काम और क्या है कि जो लक्ष्य हम रखें उस पर दृढ़ रहें। जब बुद्धि में हम उसकी दृढ़ता पक्की कर ले, दृढ़ता कर लेते हैं, माना पक्का कर लेते हैं, फिर वो अपने आप काम हमारा चलता रहता है, फिर मन गड़बड़ नहीं कर सकता है। मन गड़बड़ तब करता है, माना बदल जाता है, जब हम अपने में वो दृढ़ता नहीं रखते हैं। तो दृढ़ता बनाना ये बुद्धि का काम है, चिंतन करना अर्थात मेरे अंदर जो समझ आई उस समझ को कायम रखना, और कायम रख करके उस समझ पर सोचते रहना, सोच करके उसका स्वरूप बन जाना, ये बुद्धि का काम है। और तब ही हमारे में वो शक्ति आती है, जिस शक्ति के आधार से बाप से योग लगाना हमारा सहज है, या दूसरे शब्दों में कहें इसको भी हम योग कह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये निश्चय है, ये भगवान उवाच्य है, ठीक है। अब भगवानों वाच्य पर हम मनन करते हैं अटूट, तो ये भी निश्चय का योग हुआ ना। अटूट अगर हम उस पर मनन करते हैं, वार वार उसको स्मरण करते हैं, तो ये भी समझो बाबा के प्रति याद रही ना। उनके महावाक्यों को याद करना माना बाबा को याद करना। अब बाबा को याद करने से जो शक्ति हमें चाहिए, शक्ति लेकर के शक्ति स्वरूप बनना, इसको वो स्टेज अलग अलग स्टेजेस कही जाती है। परिस्थितिपन की स्टेज माना डबल लाइट स्वरूप, कर्मातीत स्टेज, हर कर्म के बंधन से मुक्त। अब शरीर में रहते, जीवन में रहते, कर्मों में रहते, व्यवहार में रहते, कर्म बंधन में रहते, संबंध में रहते, फिर सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इस पर हम सोचें कि कैसे हो सकते हैं। अब जैसे हम सोचते जाएंगे वैसे हमारे पास ये स्पष्ट होता जाएगा कि कैसे हो सकते हैं, और वो सोचने के आधार से, क्योंकि सोचते हैं हम ईश्वरी अथॉरिटी, ईश्वरी महावाक्यों के आधार पर हम सोचते हैं, उस सोचने के आधार से वो हमारे पास उस स्टेज का अनुभव क्या है, वो हम सोचने के आधार से अनुभव तो कर लेंगे। समझ रहे हो ना, सर्व बंधनों से मुक्त स्टेज कैसी होती है, ये हम जितना इस पर थोड़ा गहराई से सोचेंगे उसका हम उस समय अनुभव कर लेंगे, और उस अनुभव की शक्ति से फिर हम अपने जीवन के कर्मों में उन बातों को उसी रीति लाते रहेंगे। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदा ही मनन चिंतन करते रहो, अथवा फिर दूसरे शब्दों में कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करो, जो बाबा तुम्हें बताते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। अधिकतर जब कोई ऐसे बाबा देती है, इस बात पर कैसे समझाया जाए, बच्चे दो बाबा कहते हैं बच्चे इस पर तुम भी समझाओ, जाकर के इस पर ऐसे लिखो, तो उसमें हमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है कि इनको हम किस प्रकार से स्पष्ट करके समझाएं जो दूसरे के बुद्धि में बैठे। लेकिन उसके पहले हमारी बुद्धि में इतना स्पष्ट इसका अनुभव हो, जिस अनुभव की शक्ति के आधार से हम औरों को इसका अनुभव करा सके। इसलिए हमें कोई भी पॉइंट को हम ले, भले आप कहेंगे आत्मा की बात तो हमारे पास बड़ी स्पष्ट है, लेकिन आत्मा का यथार्थ रूप में अनुभव, मैं जो हूं और जैसा हूं, जवाब में तो आ जाता है कि मैं अति सूक्ष्म हूं और बिंदु के समान हूं, प्रकाश रूप हूं, जवाब तो ये आ गया, लेकिन जवाब का स्वरूप। इसलिए हमें इसको मनन करना, मनन करने में आपके पास यही शब्द रिपीट होंगे, लेकिन उन शब्दों के आधार से फिर हम जब एकांत में बैठ करके इस पर सोचें, इस पर मनन चिंतन के लिए चलते फिरते भी हम करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें इसके लिए एकांत में रहना भी जरूरी है। अब एकांत के लिए अभी के समय के अनुसार तो विशेष समय मिले वो जरा कहेंगे मुश्किल है, लेकिन वैसे तो कहा जाएगा मुश्किल कोई बात नहीं, हम जैसे समय निकाले निकाल भी सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका है एकांत का, कि हम अपन को अंतर्मुक्ता में रखें। जितना हम अंतर्मुक्ता में रहेंगे धीरे धीरे हमारे पास एकांत का समय निकल आएगा। हम बाकी 10 मिनट में इसको पूरा करके और फिर हम योग में बैठेंगे। जी अंतर्मुखता में मनन चिंतन नहीं होता ऐसा बोलते। हाँ हाँ वो इसीलिए बोला ना कि मनन चिंतन के लिए जो हमें एकांत चाहिए, एकांत अगर हमें खास समय नहीं मिल सकता तो हम अंतर्मुखता का आधार लें। तो अंतर्मुखता माना ही ये है कि हम अंदर ही अंदर, वैसे अंतर्मुखता का अर्थ है अंदर के मुख को देखना। अंदर का मुख कौन सा है? अंदर का मुख आत्मा, माना अंतर आत्मा को देखना। और जैसे स्थूल मुख की ये कर्म इंद्रियां, जिसको चेतन कर्म इंद्रियां बोलते हैं ना, इसको ज्ञान की कर्म इंद्रियां बोलते हैं, आंख मुख कान इन सबको, ऐसे समझो आत्मा की ये मन बुद्धि संस्कार जो अंदर की है, उनकी जो ये चैतन्य शक्तियां हैं, जिसके आधार से आत्मा की शक्ति जागृत होती है, माना समझ में आती है, तो हमें अंदर ही अंदर अपने इन शक्तियों को कंट्रोल में भी रखना है और शुद्धता में भी ले आना है। तो जब हम अंदर ही अंदर अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं, माना मैं आत्मा कैसी हूं, कैसी हूं का मतलब ये नहीं कि हम अपने वर्तमान स्वरूप को चिंतन करते रहें। कैसी हूं माना हम अपने मैं जो हूं और जैसी जो मेरा अनादि स्वरूप है, जो मेरा आदि स्वरूप है, जो मेरी अनादि शक्तियां हैं, जो मेरे अनादि गुण हैं, उसको शब्द तो एक ही कहने में आता है, हम अपने अंदर आत्मा को देखें। तो आत्मा को क्या देखेंगे? जैसे समझो स्थूल में हम किसको देखते हैं, तो देखने से फौरन बुद्धि में आ जाता है ना, कैसा है क्या है उसके गुण अवगुण, माना वैसे अगर देखो तो उसकी अच्छाइयां वगैरह आ जाएंगी ना, माना वो तो बुद्धि का काम कितना, सेकंड का, सेकंड में कितनी बातें अंदर आ जाती है। ऐसी रीति से अंदर ही अंदर हम अपनी आत्मा को देखें, तो उन आत्मा के कभी आत्मा की शक्तियों को जागृत करें। शक्तियां कौन सी? पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, गुणों की शक्ति, चाहे एक एक को इमर्ज करे। चलो आज हम अपनी सत्यता की शक्ति को इमर्ज करते हैं। समझो हमने ये सोचा ना, अगर लक्ष्य हमारा पक्का है, दृढ़ है, आज हम अपनी सत्यता की शक्ति को देखते हैं, वही चिंतन है, एक ही चिंतन है बुद्धि में। चलो पहले कुछ जवाब नहीं आता है, क्या सत्यता की शक्ति कैसी, पर मथन उस पर ही चलता है, कैसी शक्ति। कभी तो ज्ञान का विस्तार सुना हुआ है, वो भी आएगा बुद्धि में, पर उसका अधिक विस्तार न करके सत्यता क्या है सोचो। अंदर सत्यता की शक्ति क्या होती है? उसके अंदर अडोलता, उसके अंदर निर्भयता। अब वो अडोलता और निर्भयता कहां तक और कैसी, तो हम इसमें वर्तमान अपनी शक्ति को न देखें, अपनी वर्तमान स्थिति को न देखें। अंतर्मुखता हम इसलिए ही धारण करते हैं कि हम अंदर ही अंदर अपनी वास्तविकता को सोच लें। जितना हम अपनी वास्तविकता को सोचेंगे, उतना वो वास्तविकता का सोच हमारे अंदर शक्ति रूप की जागृति पैदा करेगा, और वो ही शक्ति हमें जीवन में, कर्मों में सत्यता को इमर्ज करती जाएगी। जो जैसा है, जैसी जो बात है, क्योंकि हमें ज्ञान भी मिला हुआ है। इस बात का स्पष्टीकरण अलग है ज्ञान और योग, ज्ञान का किन किन बातों से संबंध है, ज्ञान को हमें किस प्रकार से यूज करना है, ये एक अलग विषय है। लेकिन बुद्धि में हमारी भरे हुए हैं तो उसको हम जीवन में किस प्रकार से लाएं जो हमारी सत्यता की शक्ति को प्रमाणित करते जाए। तो जिस प्रकार से हम अंदर में सोच पक्का रखेंगे, सोचते जाए, समझो कभी हम सोचते हैं हमें जवाब नहीं आता है, हर्जा नहीं, हमें ये इधर जैसे समझो कोई बात की इन्वेंशन की खोज की जाती है तो ऐसा तो नहीं है थोड़ा ही खोदने पर कुछ निकल आता है, फौरन निकलता है कुछ। खोज करने जाओ तो एकदम से कोई चीज नहीं मिलती है, खोजते रहो खोजते रहो खोजते रहो, आखिर निकल आएगा। लेकिन पक्का है कि मुझे इस बात की खोज करनी है और फिर उनकी नई नई बात निकल आती है। ये बात भी ऐसी है, अंतर्मुखता माना अपनी अंदर आत्मा को। वैसे तो खोजना शब्द नहीं देंगी मैं, क्योंकि हमें पता है, जानते हैं, मानते हैं, निश्चय हैं, उसको पहचान लिया है। लेकिन उनकी शक्तियों को धारण करना अंदर, जिसको दूसरे शब्दों में हम कभी कभी गहराई में जाना कहते हैं, गुह्यता में जाना कहते हैं, महीनता में जा, ये अलग अलग शब्द हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग भाव आ जाता है, परंतु हम इसको एक भाव में भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अंतर्मुखता को अपनाएं। जैसे मैं समझती हूँ आप लोगों को अनुभव होगा, शुरू में जब आते हैं, जब शुरू शुरू में ज्ञान सुनते हैं तो एक नई बात सुनने के कारण सारा उस पे ध्यान चला जाता है, उस पर ही चिंतन चलता रहता है, और तभी हमें बड़ी खुशी अनुभव होती है, खुशी में नाचने लग जाते हैं और हर बात को जल्दी जल्दी अपना लेते हैं, हमारे से बुराइयां निकल जाती है, सद्गुण आ जाते हैं, बस कुछ हद तक पहुंच जाते हैं। सबको ये बात दिल से लगती है, होता है ऐसा, क्योंकि प्राप्ति हो गई ना, ये नहीं समझती है आज संपूर्णता आगे है, लेकिन जितनी प्राप्ति हो गई ना उस समय खुश हो जाते हैं। और आजकल तो फिर हमारे सेवा का विस्तार है, लग जाते हैं सेवा में, तो अंतर्मुखता किनारे हो जाती है। और अधिक बोलना, अधिक उस पर सोचना, बाहर की बातों को, माना सेवा की बातों को सोचना, अंतर सोचना, स्वयं के प्रति शक्ति को जागृत करना, ये हमारा कार्य ढीला हो जाता है। पढ़ाई का कार्य चालू रहता है, क्योंकि वो तो बाबा पढ़ाने आते हैं, इसलिए वो हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उस पढ़ाई को धारण करते रहना, जैसे शुरू में करते, इसलिए वो शुरू की जो हैबिट है, नियम क्यों दिए जाते हैं, नियम का मतलब ही ये रहता है, क्योंकि नियम तो हमको शुरू से ही मिलता है ना, तो शुरू में हम उसी नियमों पर पक्के होते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, आगे चल करके उस पर थोड़े हल्के इजी हो जाते हैं। तो जहां हम इजी हो जाते हैं वहां हमारे में लेजीनेस आ जाती है। लीजीनेस आ जाती है ना, स्ट्रांगनेस निकल जाती है। तो फिर अगर स्ट्रांगनेस निकल गई तो शक्ति कहां से आएंगी, फिर शक्ति हमारी आगे नहीं बढ़ती है, फिर सेवा से हमें खुशी होती है, औरों को हम देते हैं, वो उनको खुश देख करके, उनको सुख देख करके, इसमें हम खुश होते हैं। लेकिन हमारी आगे प्रोग्रेस हो उसमें थोड़ा हम रुक जाते हैं। लेकिन अब हमें इस बात का ध्यान रखना ही है कि हमें स्व उन्नति सेवा के साथ साथ जितनी हम सेवा करें उतना हम अंतर्मुखता को भी जरूर अपनाएं। हमने साकार बाबा को देखा था, अंत तक भी बाबा एकांत जरूर लेते थे, इतनी कारोबार होते, इतना हम सबके साथ होते, हर कारोबार को बाबा स्वयं चलाते थे। यहाँ तक आज भोजन क्या बनना है, सवेरे सवेरे भोजन क्या बनना है वो भी बाबा बताते थे। आज टोली क्लास में क्या देनी है वो भी बाबा पूछते थे और बताते थे। आज क्लास में रिकॉर्ड क्या बजना है मुरली के पहले वो भी बाबा बताते थे। माना हर कारोबार करते थे, लेकिन ये सब होते भी बाबा एकांत जरूर लेते थे। कब लेते थे? बाबा का जागरण सवेरे 2:30 बजे। पर वो तो हम नहीं देखते ना, समझो, लेकिन हम देखते थे सुबह के टाइम, और खास करके इन लेटेस्ट दिनों में सवेरे सवेरे बाबा मुरली के पहले 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 दिनों में तो हम लोग जाते थे, बाबा बात करेंगे, और हम लोगों को भी होता था हम पहले पहले जाएं, बाबा के जो बोल निकले पहले हमारे प्रतो हम सुने वो बोल। लेकिन फिर बाबा क्या करते थे, मुरली के पहले बाबा किससे बात नहीं करते थे, एकांत। और कभी कभी शाम के समय, कभी कभी दिन के समय देखो तो बाबा अकेले अकेले चक्कर लगाते रहेंगे। भले हम लोग जाएंगे भी ना, तो बाबा हम लोग को ऐसे देखते भी जैसे देखता नहीं है। हम समझे कि बाबा अभी बात नहीं करेंगे और हम आगे न रहे, माना बाबा ऐसा दिखाएंगा कि जैसे बाबा अपनी मस्ती में है। तो हमने देखा कि सारी कारोबार करते बाबा अपना पर्सनल टाइम, कोई ना कोई टाइम सारे दिन में एकांत जरूर लेते थे। और ये एकांत लेना इतनी जरूरी है, भले अभी हम कहते हैं चलो भाई सोने के समय बेड पर ही बैठे या 10 मिनट बाबा को याद किया, अपना सारे दिन का चार्ट देखा, वो भी तो देख लिया ना, इसमें एकांत क्या लिया। एकांत माना एक के अंत में जाना। तो कुछ समय जैसे और हमारा नियम है, वैसे ये भी हमारा नियम जरूरी है कि एक के अंत में जाना, माना बाप के प्रति महीनता से उसको सोचना। महीनता से सोचना माना बाप की शक्ति के प्रति सोचना, बाप की शक्ति से रोज रोज कोई ना कोई प्रकार की शक्ति पर इस प्रकार से सोचना जो हमें उसका महसूस हो कि इस शक्ति की महानता क्या है। और वो सोचना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बाप की जो भी मुरली है, जो भी महावाक्य हैं, उनमें से ही जो महावाक्य है, कभी किन महावाक्यों को, कभी किन महावाक्यों को लेकर के इन महावाक्यों के अंदर क्या शक्ति भरी हुई है, इस महावाक्यों से कौन सी बात सिद्ध होती है, जिससे सिद्ध करके और क्या शक्ति प्राप्त होती है। वो तो अगर हुआ कि वो तो महावाक्य उठा करके कुछ कुछ भाई ये शब्द ऐसे है उसको इस प्रकार से सोचना चाहिए, और आप लोग तो पुराने हैं, इतने नए नहीं है जो महावाक्यों को लेकर के हम बताएं ये महावाक्य इस पर ऐसे सोचो ऐसे सोचो ऐसे सोचो। इसलिए इन बातों को हम ध्यान में रखें कि योग से संबंध हमारे मन और बुद्धि का है। हमें अपने मन और बुद्धि को सदा, मोटे शब्दों में हम कहते हैं, शुद्ध चिंतन में रखना चाहिए, जिससे हमारा शुभ बोलना अथवा शुभ सोचना चलता ही रहे, जिससे हमारी भावनाएं शुभ बनी रहे। टोटल कहा जाए हमारी सदा स्मृति और वृत्ति ऐसी शुभ बनी हुई हो जो अशुभ हमारे सामने आवे, जैसे बाबा अव्यक्त बाबा मुरली में कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अशुभ सामने आवे, मेरी इतनी शुभ वृत्ति बनी हुई हो जो अशुभ आते भी मैं उसके अशुभ को न सोचूं, मेरी शुभ भावना काम करती रहे, उसकी अशुभता कुछ भी हो लेकिन वो अशुभ मेरे पर स्पर्श न करे, अर्थात उनका अशुभ मेरे सोच तक आवे नहीं, चाहे मैं समझता हूं ये किस भी भाव से आई है। इतनी हमें अपनी स्मृति और वृत्ति को इतना शुद्ध बनाना है जो सदा हमारी शुभ भावनाएं जागृत रहे और सदा हम स्मृति स्वरूप बने रहें। ये है मनन चिंतन से फायदा अथवा इसका योग से गहरा संबंध। ओम शांति। अभी हम 15 मिनट तालियां क्या है ये तो आजकल का रवाज हो गया है, नहीं तो अपना तो साइलेंस का ही है। हाँ, जितना हम सुने उसका ही अभी अनुभव करें। अब हमारे अंदर बस एक ही शुभ संकल्प हो, उसका विस्तार भी ना हो। चाहे आपको जो टॉपिक मिली है ज्ञान सूर्य की, अब देखो सूर्य समान जो विचार सागर मंथन किया है उसको प्रैक्टिस में लाओ। सूर्य समान इतना पावरफुल, इतनी तेज किरणें जो कचरे को भस्म कर ले, अर्थात अपने अशुभ विचारों को आने ही न दे। ओम शांति।